नमस्ते फ्रेंड्स, हम सबका स्वागत ओशो रेडियो की मेडिटेटिव जर्नी में। आज के प्रोग्राम में हमने डिस्कोर्स पद घुंघरू बांध वॉल्यूम नंबर 10 से लिया है, जिसमें ओशो हमें आज में जीने को कह रहे हैं। शुरुआत करते हैं देवा प्रेमल के एक नंबर के साथ।
चिदानंद रूप शिवो हम शिवो चिदानंद रूप शिवो हम शिवो हम मनो Shivoham Shivoham
पहला प्रश्न, परंपरा में भी फूल खिलते हैं और परंपरा के कारण भी फूल खिलते हैं, व्यवस्था कहें या परंपरा, वह तो मिटेगी नहीं, उसी में कभी कभी जान डालनी पड़ती है। और तुलसीदास ने यही किया था, महाजन जो कुछ करते हैं उसी से परंपरा आरंभ हो जाती है। परंपरा में न तो कभी फूल खिले और न कभी खिल सकते। परंपरा से किसी चीज का कभी कोई जन्म नहीं होता। यद्यपि जब फूल खिलते हैं तो परंपरा बनती है, इस भेद को ठीक से समझ लेना। जब भी फूल खिलेगा तो परंपरा बनेगी, जब भी कोई चलेगा तो पग चिन्ह बनते हैं, जब भी कोई बोलेगा तो शास्त्र बनेंगे, जब भी कोई सत्य का अनुभव करेगा तो संघ बनेगा, जब कहीं परमात्मा घटेगा तो लोग मधुमक्खियों की तरह उस शहद की तरफ दौड़ेंगे। लेकिन परंपरा से सत्य का जन्म नहीं होता, परंपरा तो मुर्दा लकीर है। जब कोई जन्मता है तो फिर उसके बाद तो मृत्यु घटती है जरूर, लाश पड़ी रह जाती, लेकिन लाशों से किसी का जन्म नहीं होता। जन्म तो मृत्यु में बदल जाता है, इसे स्मरण रखना। बुद्ध पैदा हुए, जो कहा वो अपूर्व था, सुन के लोग मोहित हुए, सुन के लोग आंदोलित हुए, सुन के लोग प्रभावित हुए। बुद्ध को देख के साथ चलने की आकांक्षा जगी, अभीप्सा जगी, लोग साथ चले। बुद्ध विदा हो गए, जो भीड़ चली थी वो चलती ही रही, उस भीड़ के बाद और भीड़ और भीड़, क्योंकि जो बुद्ध के पास आए थे उनके बच्चे हुए, बच्चों के बच्चे हुए, परंपरा बनी। लेकिन जो लोग बुद्ध के पास आए थे वो बुद्ध को देख के आए थे, बुद्ध के जादू ने उन्हें खींचा था, वो जो सत्य जगा था बुद्ध ने, उसने उन्हें आकर्षित किया था, वो आंखों की लपट बुद्ध की उन्हें बुला लाई थी। लेकिन उनके बेटे होंगे, बेटियां होंगे, वो इसलिए मानेंगे कि बाप मानते थे, मां मानती थी, फिर बेटों के बेटे होंगे, वो इसलिए मानेंगे कि परिवार में माना जाता रहा है। अब वह बात नहीं रही, अब इस परंपरा में ये जो जड़ लकीरें छूटी रह गई हैं, इनमें कभी फूल नहीं खिलेंगे, और जब भी कभी कोई फूल खिलेगा तो ये परंपरा उसका विरोध करेगी। कई बातें समझ लेने जैसी हैं। पहली बात, जब किसी को सत्य का अनुभव होता है शब्दों में कहते ही 90% तो खो जाता है, 10% मुश्किल से बच पाता है। शब्द में कहते ही सत्य खोने लगता है, सत्य की छाया ही पड़ती है शब्द में। ऐसा ही जैसे सुबह का सूरज निकला और किसी ने एक तस्वीर बनाई, तस्वीर प्रतीक मात्र है, तस्वीर का सूरज सूरज नहीं है, सिर्फ सूरज के लिए एक अंकन है। जैसे तुमने संगीत सुना और फिर संगीत को लिपिबद्ध करके कागज पे लिख लिया, वही राग वही गीत, लेकिन कागज पर जो लिपिबद्ध संगीत है वो संगीत नहीं है, उससे तुम नाचोगे नहीं। ऐसा समझो कि कोई संगीतज्ञ बांसुरी बजाता था और सांप नाचने लगा। अब इस सांप के सामने तुम रख दो लिपिबद्ध कागज पर संगीत, इसे तुम धोखा न दे पाओगे। सिर्फ आदमियों को धोखा हो जाए, ये सांप धोखा नहीं खाएगा, ये सिर नहीं हिलाएगा, इस पर कोई परिणाम नहीं होगा तुम्हारे लिपिबद्ध। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि लिपिबद्ध करने का कोई उपयोग नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सुबह का सूरज निकले तो तस्वीर मत उतारना, लेकिन तस्वीर को सुबह का सूरज मत समझना। तो जब कोई जागता है जानता है, स्वभावतः शब्दों में कहेगा, और तो कहने का कोई उपाय नहीं। शब्द में कहते ही बात तस्वीर बन गई। मैंने तुमसे कुछ कहा, जब मैं कह रहा था तब वो सत्य था, तुम तक पहुंचते पहुंचते खो गया, बस एक तस्वीर रह गई जिसमें अब कोई प्राण नहीं। लेकिन अगर तुमने मुझे शांति से सुना है तो शायद शब्द में लिपटी हुई मेरी अनुभूति थोड़ी सी तुम तक पहुंच जाए, अगर सहानुभूति से सुना है तो शायद थोड़ी सी लपट तुम तक पहुंच जाए। लेकिन तुम अपने बच्चों को कैसे ये लपट दे सकोगे? ये तो पहली बात तुम्हारे पास ही नहीं, फिर ये बच्चे अपने बच्चों को कैसे दे सकेंगे? ये कठिन होता जाएगा, ये प्रति पल पे कठिन होता जाता है। पहले तो सत्य का अनुभव करने वाला जब बोलता है तभी बहुत कुछ खो जाता है, फिर सुनने वाला जब सुनता है तब बहुत कुछ खो जाता है, क्योंकि तुम सुनोगे अपना मिला दोगे, कुछ घटा दोगे, कुछ का कुछ सुनोगे। जिन मित्र ने प्रश्न किया है उन्होंने भी कुछ का कुछ सुन लिया है, उन्होंने भी अपने पक्षपात की बेचैनी से पूछा है। तुलसीदास से लगाव होगा, जैसा कि सामान्यतः हिंदुओं का है, तो बेचैनी हुई होगी चित्त में, उस बेचैनी में जो भी उन्होंने सुना चूक गए। उस बेचैनी में तुलसीदास महत्वपूर्ण हो गए, मैं जो कह रहा था वो गैर महत्वपूर्ण हो गया। उस बेचैनी में पुराना हिंदू मन विवाद करने लगा, संस्कार पुराने अतीत से आते, मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल नया है। नया जब भी अतीत से आती हुई धारा के विपरीत पड़ता है तो बहुत ही हिम्मतवर आदमी नए के साथ हो पाता है, कमजोर आदमी पुराने के साथ होगा, क्योंकि पुराने की साख है, प्रतिष्ठा है, और फिर कितने जन्मों से सुना है, फिर ये पूरा जीवन उसी से भरा है। पांडित्य बाधा बना होगा, तुम समझ नहीं पाए कि मैंने क्या कहा। तुम समझ पाओगे भी नहीं तब तक जब तक तुम्हारे पक्षपात है। तुलसीदास से तुम्हारा कोई मिलना नहीं हुआ, मेरे सामने तुम मौजूद हो। तुलसीदास महाजन थे कि नहीं ये सिर्फ तुम्हारी धारणा होगी, थे कि नहीं इस संबंध में तुम निर्णय नहीं ले सकते। तुम्हें अभी सत्य का अनुभव भी नहीं हुआ है कि तुम तौल कर सको कि तुलसीदास को सत्य का अनुभव हुआ था या नहीं हुआ था। तुम्हारे पास क्या उपाय है तौल का? तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुलसीदास महाकवि नहीं थे, न तो मीरा वैसी कवि है और न कबीर वैसे कवि हैं, तुलसीदास महाकवि थे, लेकिन मैं कह रहा हूं मीरा ने जाना और तुलसीदास ने नहीं जाना। कविता में माधुरी है, उनकी कविता श्रेष्ठतम है, जैसे कालिदास, जैसे शेक्सपियर, उस कोटि की है। मीरा या कबीर की कविता में क्या है? अपढ़, असंस्कृत। लेकिन फिर भी तुमसे मैं कहना चाहता हूं, कबीर ने जान के कहा है, तुलसीदास ने मान के कहा है। तुलसीदास परंपरा के अनुकूल है, जो चला आया है, जैसा चला आया है उसे वैसा ही स्वीकार किया है, उसके परिपोषक है। फर्क समझना, जब जीसस ने कुछ कहा, जब भी सत्य कहा जाएगा तो नई परंपरा बनती है। तुलसीदास ने किसी नई परंपरा को जन्म नहीं दिया, पुरानी परंपरा को ही मजबूत किया। कबीर से नई परंपरा बनी, नानक से नई परंपरा बनी, बुद्ध से नई परंपरा बनी। जब भी सत्य का आविर्भाव होगा तो नई परंपरा बनेगी। हालांकि मैं तुमसे कह रहा हूं कि यह परंपरा भी उतनी ही झूठी हो जाएगी जितनी पुरानी परंपरा थी, क्योंकि यह भी जब पुरानी होगी तो झूठी हो जाएगी। मैं तुमसे जो कह रहा हूं इसकी भी परंपरा बन जाएगी, लेकिन परंपरा बनते बनते झूठी हो जाएगी। तुम्हारी अड़चन यह है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि जो मैं कह रहा हूं अगर यही किताब में लिखा गया, बिल्कुल यही लिखा गया, तो फिर कैसे झूठा हो जाएगा? फिर भी झूठा हो जाएगा, क्योंकि सत्य अनुभव में होता है, शब्द में नहीं होता। सत्य कहने वाले में होता है, कही गई बात में नहीं होता। मैं तुमसे जो कह रहा हूं ऐसा का ऐसा तुम जाके दोहरा देना, बिल्कुल ऐसा का ऐसा, इसमें रत्ती भर फर्क मत करना, तो भी सत्य नहीं होगा, क्योंकि सत्य मैं जो कह रहा था मेरे अनुभव में जुड़ा था। तुम जो कह रहे हो सुनी हुई बात कह रहे हो, तुम जो कह रहे हो उधार बात कह रहे हो। तुलसीदास उधार है, तुलसी में कोई क्रांति नहीं है, लकीर के फकीर है, इसलिए लोगों को जचे, क्योंकि लोग भी लकीर के फकीर हैं। क्रांतिकारी इतने थोड़ी जचते, क्रांति तो तिल मिलाती है। तो दुनिया में दो तरह के महात्मा हैं, एक जिनसे क्रांति का जन्म होता, जिनसे सूत्रपात होता किसी दिए का, कोई ज्योति जलती, और दूसरे जो पुराने दियों की प्रतिष्ठा का सहारा लेकर प्रतिष्ठित होते। दूसरों को मैं झूठे संत कहता हूं, और मैं जरा भी लीपापोती नहीं करना चाहता। जैसा देखता हूं वैसी तुमसे कहता हूं, तुम जरा अपने पक्षपात एक तरफ रख के सोचना। तुलसीदास वर्ण व्यवस्था के पक्षपाती, बुद्ध नहीं, कबीर नहीं, नानक नहीं। तुलसीदास सब सड़ा गला जैसा भी है पुराना होना चाहिए तो उसके पक्षपाती। जरा भी काटने की तोड़ने की हिम्मत नहीं, पोषक है परंपरा के, इसलिए हिंदू मन को खूब जमे, जमना ही चाहिए, जो तुम्हारा पोषण करे, जो तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हारी धारणाओं को बचाए, वो जमना ही चाहिए। कबीर नहीं जमे, कबीर कोई घर ना बना सके हिंदुओं में। कबीर की तो छोड़ दो, बुद्ध जैसा आदमी नहीं जमा। बुद्ध जैसा आदमी पृथ्वी पर मुश्किल से कभी होता है, हिंदू उससे भी चूक गए, उसको भी घर बाहर कर दिया। मगर यह सदा से होता रहा, यहूदियों ने जीसस से बड़ा बेटा पैदा नहीं किया और उसी को घर बाहर कर दिया। क्यों? छोटे मोटे धर्मगुरु भी स्वीकृत हैं, जीसस स्वीकृत नहीं। वही स्वीकृत है जो पुराने का समर्थन करता है। जो पुराने का समर्थन नहीं करता वह स्वीकृत नहीं हो सकता, वो तुम्हारी जड़ें हिला देता है, वो तुम्हारे पुराने भवनों को गिरा देता है, वो नई सुबह की बात करता है। उस नई सुबह तक थोड़े से हिम्मतवर लोग ही जा सकते। तो कबीर कहते हैं, जो घर बारे अपना चले हमारे संग। तुलसी तुम्हारे पुराने घर में ही लीपापोती कर देते हैं, छबाई कर देते हैं, रंग बदल देते हैं, पुराना घर उसी को साथ संवार देते हैं कि मजसरो ये तो बड़ा प्यारा घर है, ये तो कितने महापुरुषों ने बनाया, इसको छोड़ के कहां जाते। और कबीर कहते हैं जो घर बार है अपना, ये किस घर की बात कर रहे हैं, ये संस्कार संस्कृति सभ्यता धर्म पुरातन का जो घर है इसे जला दो तो ही तुम आगे बढ़ पाओगे, अन्यथा ये धूल तुम्हारे दर्पण को घेरे ही रहेगी। महाजन मैं उसे कहता हूं जो नए को अवतरित करता है, जो जगत में परमात्मा को फिर से लाता है, बाकी नेतागण हैं, महाजन कुछ भी नहीं। उनकी अपनी कलाएं हो सकती हैं, अपनी कुशलताएं हो सकती हैं, उनमें मुझे कोई संदेह नहीं उनकी कला और कुशलता में। अगर काव्य की तरह सोचो तो तुलसीदास बड़े कवि हैं, लेकिन अगर अनुभव की तरह सोचो तो कोई अनुभव नहीं, किसी तरह का अनुभव नहीं। अनुभव होता तो हिंदू दुश्मन हो गए होते, वो कसौटी होती। अनुभव होता तो हिंदुओं ने त्याग दिया होता, वो कसौटी होती। अनुभव होता तो हिंदू दुश्मन की तरह पीछे पड़ गए होते, लेकिन हिंदू ने सिर आंखों पर लिया, वो हिंदू की जड़ता के सहयोगी थे। जब भी सत्य होगा तो क्रांतिकारी होगा, बगावती होगा, विद्रोही होगा, होगा ही, क्योंकि तुम असत्य में जीते हो। जब भी सत्य आएगा तो तुमसे टक्कर होगी, सत्य तुमसे टकराएगा, तुमसे टकराएगा तो ही तुमको रूपांतरित कर सकता है। इसलिए परंपरा में कभी फूल नहीं खिलते, कभी नहीं खिले, और जो फूल खिले हैं उनका परंपरा से कोई संबंध नहीं, वो अपने कारण खिले, वो किसी परंपरा के कारण नहीं खिले। तुम ऐसा नहीं कह सकते कि जीसस यहूदी परंपरा के फूल हैं, नहीं, यहूदी परंपरा तो स्वीकार ही नहीं करती, इसलिए तो ईसाईयत पैदा हुई। ये फूल उस परंपरा के नहीं। मेरे देखे जब भी कोई आदमी धर्म के अनुभव को उपलब्ध होता है तो परमात्मा का नया आविर्भाव है, नई तरंग है, उसका अतीत से कोई संबंध नहीं, वो अतीत की पुनरुक्ति नहीं, वो पीछे का दोहरावा नहीं। हालांकि जिनने भी अतीत में सत्य अनुभव किया था वही सत्य उसने अनुभव किया है, फिर भी मैं तुमसे कहता हूं उनका दोहरावा नहीं है, उनसे कुछ लेना देना नहीं। बुद्ध ना भी हुए होते तो भी मैं होता और ऐसा ही होता, बुद्ध हुए तो भी हूं तो भी ऐसा ही हूं, मैं बुद्ध की पुनरुक्ति नहीं हूं। कृष्ण ना हुए होते तो भी बुद्ध होते, कृष्ण के होने न होने से बुद्ध के होने में कोई फर्क नहीं पड़ता। बुद्ध कोई कृष्ण के ही नए संस्करण नहीं है। हालांकि जो कृष्ण ने जाना वही बुद्ध ने जाना, यह भी ख्याल में रख लेना, जो कृष्ण ने जाना वही बुद्ध ने जाना, जो बुद्ध ने जाना वही कबीर ने जाना, जो कबीर ने जाना वही मीरा ने जाना। इस जानने में जरा भी फर्क नहीं, क्योंकि सत्य तो एक है, जब भी कोई जानेगा उसी को जानेगा। सत्य तो समयातीत है, उसका समय से कोई संबंध नहीं, सत्य ना नया है ना पुराना है, सत्य तो शाश्वत है। एस धम्मो सनातनो, वह तो सदा से वही है, सदा एक रस है, जब भी कोई जानेगा तो उसी को जानेगा। लेकिन न तो बुद्ध ने कृष्ण की आंखों से जाना, न कबीर ने बुद्ध की आंखों से जाना, परंपरा का कोई संबंध नहीं। कबीर ने अपनी आंख खोली, बुद्ध ने अपनी आंख खोली, दोनों ने अपनी आंख खोल कर देखा। तुलसीदास के पास अपनी आंख नहीं, तुलसीदास के पास परंपरा की आंख है। परंपरा की आंख यानी अंधापन, परंपरा की आंख ही तब हम उपयोग करते हैं जब हमारे पास अपनी आंख नहीं होती। जब अपनी आंख होती तो हम अपनी आंख से देखते हैं, हम क्यों किसी और की आंख से देखें। तुलसीदास ने ऐसे देखा जैसे हिंदू को देखना चाहिए, कबीर ने ऐसा देखा जैसा कबीर देख सकते, फर्क ख्याल में ले लेना। मंसूर ने ऐसे देखा जैसे मंसूर को देखना चाहिए, ऐसा नहीं जैसा मोहम्मद देखते, हालांकि जो देखा वो वही है जो मोहम्मद ने देखा, लेकिन देखा अपने ढंग से, निजता है, व्यक्तित्व है, अपना हस्ताक्षर है। कबीर जो कहते हैं ये, इसमें कोई बुद्ध की गवाही नहीं है, ऐसा नहीं कि बुद्ध ने कहा इसलिए ये ठीक है। कबीर कहते हैं मैंने देखा इसलिए ठीक है, मेरे देखे के कारण बुद्ध भी ठीक होते हैं, लेकिन बुद्ध के देखे का कारण मैं ठीक नहीं होता। इस फर्क को ख्याल में लेना, ये फर्क बुनियादी है। कोई कहता है मैं ठीक हूं क्योंकि ऐसा ही मनु स्मृति में लिखा है, कोई कहता है मैं ठीक हूं क्योंकि ऐसा ही कुरान में लिखा है, कोई कहता है मैं ठीक हूं क्योंकि वेदों का भी यही उच्चार है, ये परंपरागत बात है। कोई कहता है मैं ठीक हूं क्योंकि मैंने जाना, और वेद भी ठीक होने चाहिए क्योंकि जैसा मैंने जाना वैसा वेद में लिखा है, लेकिन अंततः निर्णायक मैं हूं, निर्णायक वेद नहीं है। वेद के कारण मैं सही नहीं हूं, मेरे कारण वेद सही हो तो हो, गलत हो जाए तो गलत हो जाए। मेरे पास कोई आया, मैं नागपुर में मेहमान था, एक बौद्ध भिक्षु, बड़े प्रसिद्ध भिक्षु मुझे मिलने आए। उसके एक दिन पहले ही मैं एक सभा में बुद्ध पर कुछ बोला था, तो उन्होंने कहा बात तो आपने बड़ी प्यारी कही लेकिन शास्त्र में कहीं लिखी नहीं। मैं जिंदगी भर हो गया बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन करते, कभी कहीं मैंने ये बात पाई नहीं, बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही लेकिन शास्त्र में नहीं लिखी। तो मैंने कहा शास्त्र में लिख लेना, अगर बात ठीक है तो शास्त्र में नहीं लिखे होने से गलती नहीं हो जाती, अगर बात ठीक नहीं है तो सभी शास्त्रों में लिखी हो तो भी ठीक नहीं हो जाती। तो मैंने कहा कि तुम्हारी हिम्मत ना पड़ती हो तो शास्त्र मेरे पास ले आना, मैं उसमें लिख दूंगा, तुम मेरी गवाही पर लिख लो। वो थोड़े बेचैन हुए कि ये कैसे हो सकता है। उनको अड़चन वही हो रही जो तुम्हें अड़चन हो रही कि ये कैसे हो सकता है, शास्त्र में कुछ कैसे बात जोड़ी जा सकती है। शास्त्र पर हम रुक जाते हैं, और कोई शास्त्र परिपूर्ण नहीं, कोई शास्त्र परिपूर्ण नहीं हो सकता है, क्योंकि सत्य को पूरा का पूरा कहा ही नहीं जा सका है कभी। सागर बड़ा है, हम शब्दों में जो थोड़ी बहुत बूंदें भर लाते हैं उनसे सागर नहीं चूकता। मेरे बाद जो लोग होंगे वो बहुत सी बातें कहेंगे जो मैंने नहीं कही, क्योंकि मनुष्य कुशल भी होता जाता है, सोचने में, विचारने में, शब्द में मनुष्य की क्षमता रोज बढ़ती जाती। जो मैंने नहीं कहा वो आने वाले लोग कहेंगे, तुम ये मत कहना उनसे कि ये हमारे शास्त्र में नहीं लिखा है, तुम्हारे शास्त्र में उतना लिखा है जितना मैंने कहा। लेकिन उसके बाद भी जानने वाले होते रहेंगे, और जो जानता हो उसकी मान लेना। शास्त्र कभी भी निर्णायक नहीं हो सकता, निर्णायक तो शास्त्र होता है, जिसने जाना, जिसकी आंखों में तुम्हें सत्य की झलक मिले उसको पकड़ लेना। अगर तुम मुझे मान के भी चल रहे हो और तुम्हें किसी की आंख में सत्य की झलक मिले तो किताब को जला देना, किताब को फेंक देना, किताब से कुछ लेना देना नहीं है। यह सत्य का नया आविर्भाव हुआ, लेकिन परंपरा इतनी हिम्मत नहीं कर सकती। परंपराएं बंद होने की जिद करती हैं। मोहम्मद के बाद मुसलमानों ने कह दिया कि अब आखिरी किताब आ गई भगवान के यहां से। क्यों आखिरी क्यों आ गई? हिंदू कहते हैं वेद में ही आखिरी किताब आ गई, अब आगे कोई जरूरत नहीं। जैन कहते हैं महावीर में तीर्थंकर पूरे हो गए, अब आगे कोई तीर्थंकर नहीं होगा। सभी धर्म अपनी परंपरा को बंद कर लेना चाहते हैं। बंद इसलिए करना नहीं चाहते हैं कि खतरा है कल नए संस्करण होंगे, नया सत्य अवतरित होगा, फिर हमारे शास्त्रों का क्या होगा। शास्त्रों की प्रतिष्ठा बनी रहे इसलिए आगे का द्वार बंद कर देते। 25वां तीर्थंकर नहीं हो सकता, क्यों? 24 पर क्यों अटक जाते हो? क्या कारण है? इसका तो मतलब यह हुआ कि 24 में तीर्थंकर ने जो कहा उससे आगे अब बात कभी ना बढ़ेगी, उसमें कोई परिमार्जन ना होगा, उसमें कोई सौंदर्य ना बढ़ेगा, उसमें कुछ जोड़ा ना जाएगा, फिर नए फूल कैसे खिलेंगे? ये तो ऐसे हुआ जैसे एक वृक्ष ने कह दिया कि अब मेरे बाद कोई वृक्ष ना होंगे, बस ये जो सूखा ठूंट खड़ा रहेगा यही वृक्ष है, अब तुम इसी की पूजा करते रहना। जीवन तो बहा जाता है और जीवन के बहने के साथ परमात्मा रोज बहा जाता है, और जीवन के बहने के साथ परमात्मा रोज रंग रूप नए रंग रूप में आता है, रोज की भाषा में उतरता है, हर युग के अनुकूल अवतरित होता है। सत्य तो रुकता नहीं, वो शाश्वत आता रहता है, लेकिन शास्त्र रुक जाते, शास्त्र जड़ हो जाते। तुलसीदास जड़ परंपरा के भक्त, परंपरा में फूल नहीं खिलते, फूलों को सदा परंपरा के विद्रोह में खिलना पड़ता है। परंपरा सदा नए फूलों को नष्ट करने की कोशिश करती, नई अभिव्यक्तियों को रोकने की अवरोध करने की चेष्टा चलती ताकि पुरानी अभिव्यक्ति प्रतिष्ठित रहे। कहा तुमने परंपरा में भी फूल खिलते हैं? मैंने कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं, आज तक तो नहीं हुआ कि परंपरा में फूल खिले हो। जब भी फूल खिले परंपरा के बावजूद खिले, परंपरा के कारण नहीं खिले, इसलिए तो इतने कम फूल खिलते। नहीं तो दुनिया में बहुत फूल खिले, अगर परंपराएं ना हो तो फूल ही फूल खिले, लेकिन खिले कैसे? परंपरा खिलने नहीं देती। हेनरी थारो विश्वविद्यालय से पढ़ के वापस लौटा, एक बुजुर्ग उससे मिलने आए और उन बुजुर्ग ने कहा मैं बड़ा हैरान, तुम विश्वविद्यालय से अपनी बुद्धि को बचा के कैसे आ गए? क्योंकि अक्सर विश्वविद्यालय में बुद्धि तो नष्ट हो जाती, कूड़ा करकट भर जाता है, क्योंकि विश्वविद्यालय की सारी चेष्टा यही है कि तुम्हारा मन सूचनाओं से भर दिया जाए, तुम्हारे हृदय का तो कोई परिष्कार नहीं होता, तुम्हारी स्मृति प्रगाढ़ हो जाती, तुम एक टेप रिकॉर्डर होकर लौट आते हो। बुद्धि की परीक्षा यह विश्वविद्यालय में कि तुम कितना पचाओ, ये परीक्षा नहीं, कितना वमन कर सकते हो यह परीक्षा है। पिए जाओ ज्ञान और उतारते जाओ परीक्षा में, परीक्षा में उल्टी करो, सब किताब पे फैला दो, कितनी कुशलता से तुम उल्टी कर देते हो ये तुम्हारी परीक्षा है बुद्धि की। ये कोई बुद्धि की परीक्षा हुई? याददाश्त बुद्धि की परीक्षा है? याददाश्त तो बुद्धि की परीक्षा नहीं, याददाश्त तो पुराने की होती, बुद्धि की परीक्षा तो नए के अनुभव से होनी चाहिए, कुछ नया लाओ जगत में। बुद्धि की परीक्षा सृजनात्मक होनी चाहिए, क्रिएटिव होनी चाहिए, तुम कुछ नया देखो, नया सुनो, नया बनाओ। बुद्धि तो नए का अन्वेषण करती, स्मृति पुराने को संग्रहित करती, लेकिन बुद्धि की तो कोई परीक्षा नहीं। उस बूढ़े ने ठीक कहा कि तुम कैसे बच के आ गए, मेरा भी यही अनुभव है। जब भी बच्चे स्कूल भेजे जाते हैं तब तो उनमें प्रतिभा सभी में होती, मगर जब तक लौटते हैं तब तक शायद एक आध की बचती, बच जाए सौभाग्य। प्रतिभा का बच जाना अपवाद है, क्योंकि 25 साल पड़े हैं पंडित पीछे, सब तरह का जाल उनने फैला रखा है, सब कुंजियां उन्होंने हाथ में ले रखी, वो तोड़ मरोड़ डालते, प्रतिभा को नष्ट कर देते। प्रतिभा की जगह स्मृति को पकड़ा देते। इसलिए तुम पाओगे कि जिंदगी में तुम्हारे विश्वविद्यालय से आए हुए प्रथम वर्ग के विद्यार्थी और गोल्ड मेडलिस्ट और इत्यादि जिंदगी में खो जाते, जिंदगी में उनका कोई पता नहीं चलता, जिंदगी उनको गोल्ड मेडल नहीं देती। आइंस्टीन मैट्रिक में फेल हो गया था और गणित में ही, कोई सोच भी नहीं सकता था कि गणित में यह आदमी इस पृथ्वी का सबसे बड़ा गणितज्ञ होगा, गणित में। और फेल हो जाने का कारण यही था कि प्रतिभा थी, प्रतिभा के साथ झंझट है। जैसे प्रतिभाशाली आदमी हर बात में सोचता है नए का, अब तुमसे अगर कोई साधारण विद्यार्थी से पूछो कि दो दो कितने होते हैं, वो कहेगा चार होते, बस इतनी परीक्षक जानना चाहता है कि दो दो चार होते। ये भी कोई प्रतिभा है कि दो दो चार होते, ये विद्यार्थी ने लिख दिया तुम उत्तीर्ण हो गए। आइंस्टीन को शक है इस पर कि दो दो चार जरूरी नहीं है कि हो, दो दो तीन भी हो सकते, दो दो पांच भी हो सकते। तुम कहोगे ये कैसे हो सकता है, ये आइंस्टीन की प्रतिभा को समझोगे तो ख्याल में आना शुरू होगा। आइंस्टीन कहता है दो दो चार होने में कोई अनिवार्यता नहीं है, ये तो केवल आदमी की मजबूरी है कि उसने अपनी अंगुलियों के हिसाब से आंकड़े बनाए, दस का आंकड़ा बना लिया दस अंगुलियों की वजह से। अतीत से आदमी अंगुलियों पर गिनता रहा, अभी भी जंगल का आदमी अंगुलियों पर गिनता है, अभी भी छोटे बच्चे अंगुली पे गिनते हैं। कल ही रात एक छोटे से सन्यासी अभिषेक आसे में पूछ रहा था कि स्कूल में कितने बच्चे, उसने जल्दी से दस उंगुलियां बता दी, गिनती तो उसका नहीं लेकिन उसने दस उंगुलियां बता दी। दस से गिनते हैं इसलिए दुनिया भर के गणित में दस आंकड़ा हो गया, एक से दस तक की संख्या होती, फिर तो सब उसी की पुनरुक्ति होती, ग्यारह बारह, फिर तुम करोड़ संख महासंख वो सब उसी की पुनरुक्ति है, असली आंकड़े तो दस है, दस अंगुलियों के कारण है। आइंस्टीन कहता है कि दस का आंकड़ा कोई अनिवार्यता नहीं है, ये तो एक संयोगिक बात है कि आदमी के पास दस अंगुलियां। समझो किसी आदमी को दुर्घटना हो गई और चार अंगुलियां खराब हो गई, छह अंगुलियां बची तो, या ऐसा समझो कि आदमी को दस की जगह बारह अंगुलियां होती, या ऐसा समझो कि आदमी को दो ही अंगुलियां होती, तो गणित बिल्कुल बदल गया होता, सारी दुनिया का गणित बदल जाता। आइंस्टीन कहता है दस की संख्या हो तो दो दो चार होते, लेकिन समझो कि तीन ही की संख्या है, तीन से ज्यादा संख्या नहीं, एक दो तीन, फिर आता है दस ग्यारह बारह तेरह, फिर आता बीस, क्योंकि तीन का ही आंकड़े। और आइंस्टीन कहता है तीन के आंकड़े से ही सारी समस्याएं हल हो जाती, तो दस के आंकड़े मानना क्यों। तो अगर तीन का ही आंकड़ा हो एक दो तीन, तो दो दो चार तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि चार का तो आंकड़ा ही नहीं। तो दो दो कितने होंगे, दो दो दस होंगे, क्योंकि तीन के बाद आएगा दस। और आइंस्टीन ने सारे सवाल तीन के आंकड़ों से ही हल कर दिए, कहता इससे ज्यादा की मानने की कोई जरूरत नहीं। एक दूसरे गणितज्ञ लीबनिज़ ने तो कहा कि तीन भी व्यर्थ है, दो काफी, एक और दो, बस इससे काम चल जाएगा। और विज्ञान का यह सिद्धांत है जितने काम, जितने कम से काम चल जाए उतने से चलाना चाहिए, ज्यादा बढ़ाने की कोई व्यर्थ उलझन क्यों खड़ी करनी। एक से काम नहीं चल सकता ये बात सच है, लेकिन दो से काम चल जाता है। लीबनिज़ ने सारे गणित के सवाल दो के आंकड़े से हल कर दिए, तब तो अड़चन हो जाएगी। तो इस विद्यार्थी को गणित में पास होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस तरह की झंझटें बता रहा है कि दो दो चार हो भी सकते हैं ना भी हो, दो दो दस भी हो सकते हैं। वो जो कुटा पिटाया हुआ शिक्षक है, बुद्धिहीन, जिसके पास प्रतिभा नहीं, वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, वो तो इसे उत्तीर्ण ही नहीं होने देगा। आइंस्टीन मैट्रिक में फेल हुआ, फेल होने को राजी हुआ, लेकिन अपनी प्रतिभा गमाने को राजी नहीं हुआ। अधिक लोग प्रतिभा गमाने को राजी हो जाते, अनुत्तीर्ण होने को राजी नहीं होते। तो आइंस्टीन बचा के आ गया अपनी प्रतिभा को। दुनिया में सारे बच्चे प्रतिभा लेके पैदा होते हैं, लेकिन शिक्षा, संस्कार, समाज प्रतिभा नष्ट करने वाले। 25 साल काफी समय होता है। 25 साल बहुत बड़ा समय। आदमी अगर 75 साल जिएगा तो एक तिहाई समय तो विश्वविद्यालय ले लेता है, जिंदगी का एक तिहाई। और परिणाम क्या है? जो लोग विश्वविद्यालय से निकलते हैं लेके क्या आते? बस थोड़ी सी स्मृति की कुशलता लेके आते, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। वैसी ही हालत परमात्मा अनुभव की है। प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा का अनुभव करने की क्षमता लेके पैदा होता है, फूल खिलने की क्षमता लेके पैदा होता है, लेकिन फूल खिल नहीं पाते। परंपराएं मार डालती, परंपराओं का बोझ भारी। परंपराएं कहती हैं ऐसे जियो, ऐसे उठो, ऐसे बैठो, ऐसा करो। परंपरा तुम्हें तुम ही होने का मौका ही नहीं देती। परंपरा कहती तुम किसी और जैसे हो। परंपरा कहती विवेकानंद बनो। अब तुम्हारा क्या कसूर है, क्यों तुम विवेकानंद बनो? छोटे बच्चों से कहा जा रहा है कि तुम महात्मा गांधी बनो, इनका क्या कसूर है? ये क्यों महात्मा गांधी बने? ये भारी अपमान है कि किसी से कहो कि तुम विवेकानंद बनो, महात्मा गांधी बनो, कि शंकराचार्य बनो। ये अपमान है। प्रत्येक व्यक्ति यहां स्वयं होने को पैदा हुआ है, कोई और वो बने क्यों? अगर परमात्मा को विवेकानंद ही बनाने थे तो वो फोर्ड की तरह कोई कंपनी खोल देते, असेंबली लाइन से बस विवेकानंद विवेकानंद चले आ रहे हैं, भर दो दुनिया को विवेकानंद से। एक सी कारें ही एक सी कारें, दुनिया बड़ी बेरोनक हो जाए। परमात्मा ये भूल नहीं करता। परमात्मा एक आदमी को एक ही बार पैदा करता, दोबारा नहीं दोहराता। परमात्मा पुनरुक्ति नहीं करता। परमात्मा कार्बन कॉपी में विश्वास ही नहीं करता, सब मूल लिपियां ही भेजता है। मगर इस दुनिया में कार्बन कॉपी पे विश्वास करने वाले लोग हैं, वो मूल पे भरोसे नहीं करते, वो सब मूलों को मिटा देना चाहते। उनकी बुद्धि वही, जैसा मैंने एक सरकारी ऑफिसर के संबंध में सुनी। एक सरकारी ऑफिसर के जुम्मे रिकॉर्ड थे 50 सालों के, और वो रिकॉर्ड बहुत हो गए थे, उनको रखने की भी जगह नहीं थी, और रिकॉर्ड बढ़ते ही जाते। आखिर सभी अधिकारियों ने मिलकर तय किया कि ये रिकॉर्ड अब नष्ट करने होंगे, बहुत हो गए पुराने, 10 साल पुराने बचा लो, बाकी जाने दो। मगर जैसी ऑफिसरों की बुद्धि होती, बुद्धि कहना भी ठीक नहीं उसे, तो प्रधान ने जो सूचना भेजी क्लर्कों को वो ये थी कि ऐसा निर्णय किया गया है कि 10 साल के पूर्व के जो रिकॉर्ड हैं अब उनकी कोई जरूरत नहीं है, वो नष्ट कर दिए जाएं, लेकिन नष्ट करने के पहले उनकी कार्बन कॉपी कर ली जाए ताकि वक्त पड़े काम आए। तो सभी इसी तरह जाता है सरकारी ऑफिस में, तो हर चीज की कॉपी होनी चाहिए, एक भी नहीं, 5-5, 7-7 कॉपियां होनी चाहिए। तो पुरानी आदत नष्ट करना, इसलिए नष्ट कर रहे हैं कि जगह नहीं रखने की। अब कॉपी कर लोगे तो वो उतनी की उतनी जगह कॉपी घेर लेंगी। लेकिन तुम अपने बच्चों को कहते हो कि बेटा ऐसे बनो, बेटा ऐसे बनो, बेटा ऐसे बनो, तुम अपमान कर रहे हो उसका, तुम परमात्मा का अपमान कर रहे हो। वो जैसा है वैसा ही बनने को परमात्मा ने उसे भेजा है। परंपरा मारती है, परंपरा काटती है, परंपरा बर्दाश्त नहीं करती। एक सूफी कहानी है कि एक सम्राट के महल पर एक अजनबी पक्षी आके बैठ गया जो उसने कभी नहीं देखा था, उसके देश में नहीं होता था, परदेशी था। उसे बड़ी हैरानी हुई, वो बड़ा बेचैन हुआ। उसने पक्षी को पकड़वाया और कैंची उठा के पंख काटे उसके, क्योंकि ऐसे पंख होने नहीं चाहिए, ऐसे पंख उसके देश में होते नहीं थे। इतने बड़े पंख उसने देखे थे, छोटे छोटे पंखों वाले पक्षी, उसने उसके पंख काट दिए। हालांकि वो उसकी सेवा कर रहा है, उसकी चोंच भी बड़ी लंबी थी, उसने उसकी चोंच भी कटवा दी। वो पक्षी चीख रहा है, चिल्ला रहा है, मगर राजा उसकी सेवा कर रहा है। वो यही सोच रहा है कि उसको ढंग पे ला रहा है। यही हो रहा है जब तुम किसी बच्चे को ढंग पे ला रहा है, तुम कर क्या रहे? पंख काट रहे उसके, कि तेरे पंख विवेकानंद जैसे नहीं, तेरी चोंच बुद्ध जैसी नहीं, तुझे हम काट पीट के बिल्कुल ठीक बना देंगे। पक्षी मर गया, आदमी बेशर्म बच जाता है, सब तरह कट पिट जाता फिर भी बच जाता है, सब तरफ से छांट देते हो उसको, उसकी सारी आत्मा नष्ट हो जाती फिर भी घिसटता रहता। कहां फूल है? तुम किस माली को पूछो जाके, अगर एक माली 1000 वृक्ष लगाए और कभी एक वृक्ष में एक आध फूल आए, इसको तुम कुछ माली कहोगे कि ये माली है? तुम इसको कहोगे ये फूल दिखता है, इसकी नजर से बच के आ गया, नहीं तो आता कैसे? 1000 पौधे लगाए, एक एक पौधे में 1000 फूल लगने चाहिए, वो तो लगे ही नहीं कभी, एक पौधे में एक फूल लगा है। तुम जाके इसका गुणगान करोगे कि आप बड़े भारी माली हैं, आप बड़े कुशल हैं, आप बड़े कलाकार हैं, कैसा गजब कि एक फूल आ गया। इस माली की कोई प्रशंसा नहीं करेगा। हमें यही शक होगा कि ऐसा होता है, हो सकता है कि माली की नजर चूक गई, 1000 पौधे थे, फिक्र में दूसरों की राह होगा, जहां जहां फिक्र रही वहां तो फूल आ ही नहीं सके, ये जरा कुछ नजर से ओझल रह गई बात, ये कोना कुछ अपरिचित रह गया तो फूल खिल गया। इतने आदमी पैदा होते हैं, इसमें फूल लगते कहां? इस परमात्मा को तुम माली कहोगे, मगर इसमें परमात्मा का कसूर नहीं। परमात्मा तो हरेक को इसी क्षमता से भेजता है कि तुम्हारे भीतर बुद्धत्व का प्रकाश हो, तुम्हारे भीतर मोक्ष उतरे, मगर आसपास के लोग उतरने नहीं देते। इसके पहले कि मोक्ष उतरे, वो सब तरह के कारागृह निर्मित कर देते। परंपरा है क्या? एक कारागृह। अतीत से आई हुई जंजीरें तुम्हें पहना दी जाती, हालांकि पहनने वाले कहते हैं कि ये आभूषण है, इस मंदिर जाओ, ये किताब पढ़ो, ये मंत्र जपो, इस तरह का तिलक लगाओ कि तुम हिंदू हो, कि तुम मुसलमान, कि ब्राह्मण, कि शूद्र, सब तुम्हें समझा दिया जाता है कि तुम कौन हो, और तुम्हें जरा भी पता नहीं कि तुम कौन हो, और सब तुम्हें बता दिया गया। असली सवाल तुमने पूछा ही नहीं कि मैं कौन हूं। इसके पहले कि तुम पूछो, बताने वाले, उत्तर देने वाले तैयार हैं। वो कहते हैं तुम हिंदू हो, पूछने की जरूरत क्या, हम तो बता रहे। तुम ब्राह्मण हो कि तुम ये हो कि तुम वे हो, और जिंदगी ऐसी बीत जाती है इन्हीं उधार बातों के साथ, और तुम सदा दूसरा बनने की कोशिश में लगे रहते हो। फूल खिलता है स्वयं की ऊर्जा से, फूल खिलता है निजता से, और ध्यान रखना तुम में जो फूल खिलेगा वह पहले कभी नहीं खिला था उस तरह का फूल, और फिर उस तरह का फूल दोबारा कभी नहीं खिलेगा। परमात्मा पुनरुक्ति करता ही नहीं। तो तुम्हारे ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी है, परमात्मा ने तुम्हारे ऊपर बड़ा भरोसा किया है, तुम्हें एक बड़ी क्षमता दी है कि तुम खिलना, लेकिन तुम ही जैसे, मैं फिर इसे दोहरा दूं, तुम जैसा फूल न पहले कभी उसने पैदा किया था न कभी पैदा करेगा। तुम नहीं खिले तो ये फूल बिना खिला ही रह जाएगा। तुमने, परमात्मा ने तुम्हें जो दिया था, जो संपदा दी थी, उसको अस्वीकार कर दिया। और हालांकि मैं तुमसे यह भी कह दूं कि कोई भी फूल खिले, खिलने का आनंद एक जैसा है। बुद्ध का फूल खिलता है, कबीर का फूल खिलता है, क्राइस्ट का फूल खिलता है कि जरथोस्त्र का, ये अलग अलग फूल है। बुद्ध का रंग अलग, ढंग अलग, साफी है। कृष्ण का रंग अलग, ढंग अलग, क्राइस्ट का रंग अलग, ढंग अलग, ये फूल बिल्कुल अलग अलग है। कोई चंपा है, कोई चमेली है, कोई गुलाब है, कोई कमल है, ये बिल्कुल अलग अलग है। फिर भी एक बात ख्याल रखना, जब भी कोई फूल खिलता है तो जो खिलने की स्थिति है वो बिल्कुल एक जैसी है, चाहे गेंदे का फूल खिले और चाहे गुलाब का, खिलावट एक जैसी है, खिलने का आनंद एक जैसा है। मीरा नाची और बुद्ध शांत वृक्ष के नीचे बैठे रहे, ये बुद्ध के खिलने का ढंग है शांत बैठे रहना, ये मीरा का खिलने का ढंग है नाचना। महावीर नग्न खड़े रहे, ये उनके खिलने का ढंग है। कृष्ण ने बांसुरी बजाई, ये उनके खिलने का ढंग है। लेकिन कृष्ण की बांसुरी में वही स्वर है जो महावीर की निर्दोष नग्नता में। बुद्ध के पैरों पर घुंघरू नहीं बंधे, लेकिन जो सुन सकता है उसे सुनाई पड़ेगी वही घुंघरू जो मीरा के पैरों पर बंधे सुनाई पड़ रहे हैं। जगत में फूल अलग अलग ढंग के हैं, लेकिन खिलावट एक है। कोई फूल परंपरावादी नहीं होता। यहां परंपरा बनी नहीं सकती, तुम जैसा आदमी ही पहले नहीं हुआ, परंपरा बनेगी कैसे? असली धार्मिक दृष्टि सदा व्यक्तिवादी होती, परंपरावादी नहीं। परंपरावाद राजनीति है, धर्म नहीं।
अभी सुना गया नंबर कमल की एल्बम रागा फॉर वेयर से लिया गया है, और लास्ट नंबर मिलर रिपा की इनविजिबल वर्ल्ड एल्बम से लिया गया है। एक नए एपिसोड तक हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।
I started out looking for myself. Down many paths my travels have led. Somewhere along the way I became the very thing I was searching for. Straight and true.